नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने आध्यात्मिक चैट शो में, जिसका नाम है अंतर के पट खोल। महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई कई मुख्य कथाएं यूं तो आती हैं, परंतु आज जिस कथा और जिस रहस्य के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे, वह संबंध रखता है शिव की बारात से, जिसका जिक्र महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव पर काफी किया जाता है और महाशिव पुराण के अंदर भी उसका उल्लेख है। और इस शुभ कार्य में हमारी सहयोगी बनेंगी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी।
ओम शांति।
तो बहन जी, जैसे कि आपने सुना कि आज जिस बात को लेकर हम अपनी परिचर्चा शुरू करेंगे वह है शिव की बारात, परंतु उससे पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि शिव परमात्मा के संबंध में तीन मुख्य टाइटल्स काफी लिए जाते हैं, जैसे कि शंभु, महादेव और भोलानाथ। इन तीनों के पीछे पहली बात तो इनकी परिभाषा क्या है, शंभु क्यों कहा जाता है, महादेव कैसे हैं, पहले तो हमें ये स्पष्ट कीजिए आप।
शंभु शब्द अपने आप में ही जवाब दे रहा है शंभु नाम का, क्योंकि शंभु में जब आप संधि विच्छेद करेंगे शब्द का तो स्वयं प्लस भू अर्थात
वो मिलके शंभु बनता है।
हाँ, तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस भू पर अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि परमात्मा की मुख्य पहचान जो यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है, कि परमात्मा अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। परमात्मा स्वयं ही सबके माता पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, इसलिए परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण स्वयं ही स्वयं से इस भू पर होता है, इसलिए उन्हें स्वयं भू कह करके पुकारते हैं। दूसरा, उनको महादेव कहते हैं। तो आपने परमात्मा शिव के नाम रामेश्वरम, कोटेश्वरम भी सुने होंगे। उन नामों के पीछे जो कारण है कि कहते कि राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की पूजा की थी, इसलिए शिव को रामेश्वरम कहा जाता। गोपेश्वरम में, जो कि वृंदावन में मंदिर है, दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने पूजा की। तो क्योंकि परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर इन तीनों के रचयिता तो हैं ही हैं, जिसके कारण से भी इनको देवों का देव, महादेव कहा जाता है, लेकिन साथ साथ श्री राम, श्री कृष्ण के भी आराध्य देव शिव ही हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है।
और भोलानाथ,
भोलानाथ क्योंकि परमात्मा शिव का जब दिव्य अवतरण संसार में होता है तो मनुष्य आत्माएं पाप कर्मों के कारण से इतने विकृत जीवन में होती हैं, इतनी तमो प्रधान हो चुकी होती हैं, मैली कुचैली हो चुकी होती हैं, तब भी परमात्मा शिव उनको बड़े प्यार से उनका आह्वान करते हैं कि आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जन्म जन्मांतर से तुम मुझे पुकारते आ रहे थे, अब वो समय आ गया है तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए मैं तुम्हारा माता पिता आ चुका हूँ, क्योंकि मैं ही तुम सबका माता पिता हूँ।
तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने उत्तर दिया उससे ये प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा शिव जो है उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है।
बिल्कुल ठीक।
और दूसरी बात जो और समझ में आ रही है वह यह है कि क्योंकि उनके माता पिता नहीं है, तो यानी वो मास्टर हुए, यानी सुप्रीम हुए।
हाँ जी।
तो यानी वे ही रचयिता है, क्रिएटर है इस पूरी संसार के, इस पूरे यूनिवर्स के।
बिल्कुल, परमात्मा शिव को ही क्रिएटर कहा गया है, मुख्य एक्टर भी कहा गया है और डायरेक्टर भी कहा गया है।
अब जब आपने हमें ये बताया कि परमात्मा रचयिता है, इस नाते से वो हम आत्माओं के क्रिएटर हैं, तो एक संबंध स्थापित होता है जो कि मैं समझती हूँ कि पिता का है।
बिल्कुल।
तो जब ये संबंध पिता का स्थापित हुआ, फिर ये शिव की बारात, ये शिव या शंकर किसी की भी बारात जो कही जाती है, फिर इसके पीछे आशय क्या है, क्योंकि ये बारात कैसे हो गई, पिता की बारात क्या हुई है?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शिव और शंकर आपने इकट्ठे इकट्ठे कहा है, लेकिन शिव अलग है, शंकर अलग है।
तो ये आप हमें फिर स्पष्ट कीजिए। हाँ, पहले
शिव को निराकार कहा गया है, जबकि शंकर को सूक्ष्म आकारी देवता के रूप में दिखाते हैं। हमेशा आप देखोगे शंकर तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं, अर्थात उनके भी इष्ट देव कोई और हैं जिनकी तपस्या में वो लीन हैं। फिर शिव को परम धाम निवासी कहा गया है, जबकि शंकर को सूक्ष्म लोक निवासी कहा गया है। और तो और हम प्रतिवर्ष शिवरात्रि मनाते हैं, कोई छोटा बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि आज शंकर रात्रि है। सभी कहते हैं शिवालय में चलो जल चढ़ाने के लिए, शंकरालय शब्द का कोई प्रयोग नहीं करता है। और तो और आप देखो भगत जन शिवरात्रि वाले दिन सुबह से लेकर रात्रि तक ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय इस मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता ओम नमो शंकराय, ओम नमो शंकराय, ये तो कोई भी नहीं कहता है। फिर आप देखो भगत प्रतिदिन शिव पुराण का अध्ययन करते हैं, शंकर पुराण कोई भी नहीं कहता है। तो इस प्रकार से शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं।
तो यहाँ पर मैं आपसे फिर वापस अपने उस प्रश्न पर आती हूँ कि शिव की बारात, तो अब हम शंकर की बारात नहीं कहेंगे क्योंकि शिव की बारात होती है। तो ये शिव की बारात जो है, एक संक्षिप्त में, अभी तो क्योंकि ब्रेक में जाने का समय हो रहा है, लेकिन संक्षिप्त में हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि शिव की बारात है क्या, संक्षिप्त में। अभी तो
गीता के अंदर आता है कि जिस समय संसार का महाविनाश होता है, आत्माएं अपने धाम की ओर जुगनू की तरह लपकती हैं। इसी को ही वास्तव में शिव की बारात के रूप में दर्शाया गया है। संसार के भयंकर महाविनाश के पश्चात मनुष्य आत्माएं अपने असली घर परम धाम की ओर जाती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से जा सकती हैं? क्योंकि आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते स्वयं को भी भूल जाती, पिता परमात्मा को भी भूल जाती और घर को भी भूल जाती है। तो इसलिए परमात्मा शिव को आकर के मनुष्य आत्माओं को घर वापस ले जाना होता है।
हम और गहराई से अभी जानना चाहेंगे क्योंकि शिव की बारात का की चर्चा कई सत्संगों में, शिव पुराण के जो सत्संग होते हैं या जो कथाएं होती हैं उसमें बहुत किया जाता है और बड़े चाव से लोग सुनते हैं, परंतु क्या इसके पीछे जो आध्यात्मिक सत्य है जिसका पान हम सबको करना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर उस कथा का जो मूल्य है वो हमारे जीवन में स्पष्ट होगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शिव की बारात, इसका आध्यात्मिक सत्य क्या है, कैसे इस कथा को जानने के बाद, इसके सत्य कथन को जानने के बाद, सत्य रहस्य को जानने के बाद हम अपने जीवन में कैसे प्रेरणा पा सकते हैं, वो क्या सत्य है, वो हमें बताइए।
जैसे आपने पहले सुना कि परमात्मा शिव हमारे पिता भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा संबंध बारात के संबंध में परमात्मा शिव का हम मनुष्य आत्माओं के साथ है, वो है साजन का। अगर वो साजन है तो हम सभी मनुष्य आत्माएं उसकी सजनियां हैं, लेकिन जो मनुष्य आत्माएं परमात्मा शिव को पुरुषोत्तम संगम युग पर पहचान जाती हैं और अपना तन मन धन सब उस पर कुर्बान कर देती हैं, जो उसके कार्य में सहयोगी बन जाती हैं, उन्हीं आत्माओं का गायन संगम युग पर सजनी के रूप में चलता है।
हाँ, तो यानी ये जो संगम युग शब्द आप बार बार उपयोग कर रही हैं, यही वो समय है इस मिलन का, क्योंकि हम इसे मिलन ही बोलेंगे, साजन और सजनी का, या आत्मा और परमात्मा का।
हाँ,
आत्माओं और परमात्मा का,
बिल्कुल। क्योंकि हाँ, आपने सुना भी होगा कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। परमात्मा सतगुरु स्वयं दलाल बन करके जब अपनी पहचान दें कि मैं तुम्हारा साजन शिव हूँ, तुम मेरी सजनियां हो, जब हम इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी आप देखोगे कि इस लौकिक जगत में भी प्रॉपर्टी की जहाँ पर बात आती है, उस पर अधिकार या तो पुत्र का होता है या हाफ पार्टनर के रूप में पत्नी का होता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा शिव भी हम सभी मनुष्य आत्माओं को विश्व की बादशाही देने के लिए, स्वर्ग का राज्य भाग्य देने के लिए पुत्र के रूप में अर्थात संतान के रूप में भी स्वीकार करते हैं, और जो उनको साजन के संबंध से भी अपना बनाना चाहते हैं, उस स्वरूप की भी महसूसता परमात्मा शिव करवाते हैं।
अब
ये सत्य है।
जैसे आपने अभी कहा कि परमात्मा को हम अपना पिता मानते हैं, तो उसका तो स्पष्टीकरण आपने कर दिया, क्योंकि वे रचयिता है, वे क्रिएटर है, तो उस नाते वो हमारे पिता। ये साजन और सजनी का जो संबंध है, ये कैसे आत्मा स्थापित करे परमात्मा के साथ, ये संबंध कैसे स्थापित करे, ऐसा क्या परमात्मा?
ये तो देखो सीधी सी बात है, जैसे किसी कन्या का संबंध किसी से हो जाता है, अगर उसने उसको देखा भी नहीं है, मात्र संबंध स्थापित हुआ तभी उसके मन में उसके प्रति प्रेम भाव पैदा होने लगते हैं और परमपिता परमात्मा की इस समय निरंतर याद, निरंतर उसके रिश्ते की जो महसूसता है वो हमारे मन के अंदर लगातार बनी रहे तो वो एक यही संबंध प्रेम का है जिसमें लगातार उससे हम प्रेम करके शक्तियाँ ले सकते हैं।
अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि परमात्मा साजन का अपना कर्तव्य कैसे करते हैं कि जिससे कि आत्मा सजनी बनने का अपना जो कर्तव्य है वो करे, उसका उत्तर में आप क्या कहेंगे कि परमात्मा साजन के रूप में क्या ऐसा कर्तव्य करते हैं? जैसे पिता के रूप में तो आपने बताया,
बिल्कुल ठीक बताया।
हाँ जी,
क्योंकि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते आते विषय विकारों के कारण से मैली कुचैली पतित विकारी तमो प्रधान बन चुकी होती हैं। उन सबको पावन बनाना, उन सबको साफ करना, उन सबको दिव्य गुणों से श्रृंगार करने का दिव्य कर्तव्य परमात्मा शिव संगम युग पर करते हैं, इसीलिए ही वो साजन कहलाते, क्योंकि श्रृंगार तो साजन ही सजनी का कर सकता है।
ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि आज इस बॉडी कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो श्रृंगार के ऊपर ब्यूटी पार्लर्स का काफी चलन है और लोग हर मिनट, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हर मिनट अपने आप को चेक करते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो लेकिन वो तो हो गई एक बॉडी कॉन्शियस बात हो गई या देह के संबंध में, लेकिन यहाँ आपने बताया कि आत्मा का भी श्रृंगार हो सकता है।
बिल्कुल,
तो आत्मा का श्रृंगार कैसे होता है ये अवश्य हमें बताएं। और एक तो आपने ये बताया कि आत्मा का श्रृंगार सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं साजन के रूप में, तो किस प्रकार से करते हैं?
सर्वप्रथम परमात्मा शिव जब हमें आत्म स्वरूप की पहचान देते, सेल्फ रियलाइज कराते हैं, अर्थात आत्मिक स्मृति की हमको बिंदी देते हैं, फिर हम मनुष्य आत्माएं जो पतित बन चुकी हैं उनको पावन बनने का कार्य करवाते हैं, पवित्रता का कंगन पहनाते हैं, मुस्कुराहट की लिपस्टिक लगवाते हैं और दिव्य गुणों का श्रृंगार, सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, गंभीरता, रमणीकता, अंतर्मुखता, पवित्रता, अनेकानेक ऐसे दिव्य गुण हैं जो अंतर्निहित हैं आत्मा में, लेकिन स्मृति ना होने के कारण से बॉडी कॉन्शियस स्टेज में हम सभी आ गए हैं, इसलिए उन गुणों को अपने आप से हम बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा शिव साजन को हम सजनियां याद करती हैं, क्योंकि साजन और सजनी के संबंध की जो याद होती है, तीन प्रकार की याद इस दुनिया में मानी गई है, कभी कभी आने वाली, करने वाली और सताने वाली। कभी कभी याद उनकी आती जिन्होंने दुख कष्ट के समय हमारी मदद की है, याद हम उनको करते हैं जिनसे हमारा कुछ मतलब होता है, कार्य होता है, स्वार्थ होता है, लेकिन सताने वाली जो याद है उन लोगों की हमारे जीवन में रहती जिनसे हमारा अधिक प्रेम होता है, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, जिनसे हमें कुछ प्राप्ति होने वाली होती है, उसकी याद लगातार हमको सताती रहती है। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा शिव को जब हम अपना साजन मान लेते हैं तो इस रिश्ते में उनकी याद लगातार हमको सताती रहती, जैसे एक आशिक माशूक होते हैं, जैसे लैला मजनू का आपने नाम सुना होगा, शीरी फरियाद का, वे इसी प्रकार के ही सताने वाली याद के ही एग्जाम्पल है।
तो ये जो श्रृंगार की आप बात बता रही कि, और जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया भी कि कैसे कर्ण का श्रृंगार कैसे होता है, मुख का श्रृंगार कैसे है, ये श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? मतलब इसकी प्राप्ति या इसकी फाइनल रिजल्ट क्या है? आत्मा को इस श्रृंगार की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि शिव की बरात जो आपने कही है, तो परम धाम तक आत्माएं वापस जब तक प्योर नहीं हो जाएंगी।
हाँ जी, और जैसे कि आपने पहले शुरुआत में कहा था कि आत्मा इस समय मैली कुचैली हो गई है, तो आत्मा श्रृंगार करके अपने घर जाएगी।
बिल्कुल,
तो ये जो सूक्ष्म जो विधि चल रही है, जैसे कि आपने बताया कि जो श्रृंगार कर रहा है साजन वो भी दिखाई नहीं देता, वो भी निराकार है, और जिसका श्रृंगार कर रहे हैं वो आत्मा भी दिखाई नहीं देती, वो एक चैतन्य शक्ति है, तो ये कौन सी विधि अपनाई जाती है जिस कारण से, जिसके करने से आत्मा का श्रृंगार होता है, किस विधि से होता है आत्मा का श्रृंगार, क्योंकि दोनों दिखाई नहीं दे रहे, तो ये श्रृंगार कैसे होता है?
राजयोग के अभ्यास से जो मनुष्य आत्माएं संगम युग पर अपने पाप कर्मों को योगा अग्नि में भस्म कर लेती हैं, पवित्र बन जाती, परमात्म समान स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, वो ही वास्तव में शिव की सजनियां कहलाती हैं और बारात के समय शिव साजन के साथ साथ बराबर बराबर रहती हैं। लेकिन कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी जो कि परमात्मा शिव को पहचान भी जाती हैं, लेकिन योग के निरंतर अभ्यास से अपने पाप कर्मों को कम विनाश कर पाती हैं, या कुछ मनुष्य तो क्या, लेकिन लगभग संसार के मनुष्य आत्माएं जो कि ईश्वर के अस्तित्व में कई लोग तो विश्वास ही नहीं रखते हैं, कई अगर विश्वास रखते हैं तो उसको संपूर्ण रीति से पहचानते नहीं हैं, अगर कुछ लोग पहचान भी जाते हैं तो समीप नहीं आ पाते, समझ नहीं पाते। और ऐसी मनुष्य आत्माएं जिनके कुछ न कुछ पाप कर्म या बिल्कुल ही पापी आत्माएं भी अगर हम कहें संसार में रह जाती हैं, जबकि वो सबका पिता है, उस पिता को तो सबको अपने साथ घर में वापस लेकर के जाना ही जाना है।
यहाँ पर एक बात हम समझना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि वे सर्व आत्माओं के पिता हैं, तो क्या वाकई में जो अलग अलग धर्म बने हुए हैं, या जो जैसे एक कोई अमेरिका से है, कोई जापान से है, कोई रशिया से है, इन जिनका कल्चर भी भारत से मेल नहीं खाता, क्योंकि शिव की तो पूजा विशेषकर भारत में ही होती है, शिव परमपिता परमात्मा की, तो फिर आप किस नाते से कह पा रही हैं कि शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है? अब सर्व आत्माओं में तो शायद सभी आ गए, विश्व की संपूर्ण आत्माएं आ गई, चाहे वो फिर किसी भी फेथ को, किसी भी रिलीजन धर्म को मानती हो।
बिल्कुल ठीक है।
कैसे आप हमें बताएंगी, कैसे स्पष्ट करेंगी?
देखो, मिसाल के तौर पर भारत देश के जितने भी नामी ग्रामी मंदिर हैं, जैसे अमरनाथ है, वहाँ बर्फ का शिवलिंग बना हुआ है, विश्वनाथ काशी में शिव की पूजा होती है, सोमनाथ सौराष्ट्र में है, राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाकर के पूजा की थी, नेपाल में भी पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ भी लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं, मुस्लिम लोग भी, जब आपने सुना होगा, मक्का मदीना में हज यात्रा करने के लिए जाते हैं,
जो कि चल भी रही थी अभी,
हाँ, तो उनकी मस्जिद में भी एक काला गोल पत्थर लगा हुआ है जिसको वो अपनी भाषा में संग अश्वत कहते हैं और उस पत्थर की वो परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार से जापान के अंदर बोधी लोग एक लाल गोल पत्थर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसको अपनी भाषा में वो चिंकन सेकी कहते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं की ओर भी अगर आप देखें तो हजरत मूसा ने जिहोवा की पहाड़ियों पर लाइट का ही साक्षात्कार किया था। गुरु नानक देव ने भी कहा कि एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर। क्राइस्ट की ओर भी आप, अगर क्रिश्चियन लोग भी आप देखो, यही मानते हैं कि गॉड इज लाइट। देवी देवताओं में भी देखे तो राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले किसकी पूजा की? शिव की ही की, पहले भी बताया मैंने। श्री कृष्ण ने भी शिव का ध्यान किया। यहाँ तक शिव पुराण में आता कि शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते कि हे पार्वती, मुझे भी वही प्राप्त करता जो कि शिव को दियाता है। तो कहने का भाव कि सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता, धर्म पिताओं का पिता और देवों का भी देव जो है वो तो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है।
और ये जो श्रृंगार है उसकी विधि जैसे आपने बताई वो है राजयोग। हाँ। राजयोग के ऊपर थोड़ा और हमें बताएं। और जैसे कि आपने एक और कुछ बात आपने मेंशन की थी कि कुछ आत्माएं जो हैं वो सही रूप से राजयोग की प्रक्रिया या परमात्मा को सही रूप से याद नहीं कर पाती, तो उनका हश्र क्या होता है या उनकी अवस्था कैसी रहती है, उनका क्या होता है?
उनको अगर हम कहें तो वो शिव की बारात में जो लूले लंगड़े के रूप में गायन चलता है वो वैसे ही मनुष्य हैं जिनको अपने पाप कर्मों का दंड धर्म राजपुरी में भोगने के पश्चात परम धाम में पहुंचना होता
है। हम तब से बात करते आ रहे हैं कि आत्मा विकारी हो जाती है, अवगुणी बन जाती है, तो क्या ये शुरू से आत्माएं ऐसी होती है? क्योंकि अभी आपने पहले भी बताया था कि परम धाम से आत्माएं हम आती हैं।
बिल्कुल।
और उसका नाम आपने पवित्र धाम भी कहा था।
हाँ।
तो ऐसे पवित्र धाम से जो आत्माएं आती हैं वो विकारी कैसे बन जाती है?
एकदम से ही विकार आत्मा में प्रवेश नहीं होते हैं। समय का जो चक्र चलता है, खेल चलता है, जैसे आज मनुष्य कहते हैं भाई ये हम तो चक्कर में पड़े हुए हैं, खेल की बात करते हैं तो सुख दुख का खेल है, तो लोग तो अब तक यही मानते कि सुख और दुख संसार में इकट्ठे इकट्ठे चले आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा शिव आकर के हमें जब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिसके कारण उनको त्रिनेत्री कहते, तो वो ये ज्ञान देते हैं कि सत्युग और त्रेता युग का जब समय होता है, मनुष्य आत्माएं नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज में होती हैं, नेचुरल उनके अंदर दिव्य गुण होते हैं जिसके कारण से वो देवता कहलाते हैं, नेचुरल उस समय प्रकृति सतो प्रधान होती है, जिसके कारण से हर मनुष्य का जीवन सुख शांति वैभव से संपन्न होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे आप देखो सारा दिन का समय भी चार पहर के रूप में होता है, सुबह दोपहर शाम रात्रि समय में अंतर आप अपने आप महसूस करते हो, तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सत्युग का समय सतो प्रधान आत्मा होती है, त्रेता में सतो अवस्था में होती है और द्वापर में। ये मैं आपको एक होलसेल की नॉलेज की बात कर रही हूँ। सब आत्माओं के
एक सेकंड मिले ना दूसरे सेकंड से, तो ये तो पूरा चक्र है, तो उसमें तो बहुत ही चेंजेस आते होंगे।
बिल्कुल। तो जब त्रेता और द्वापर का संगम होता है उस समय भी हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर होता है। इसलिए जो देव आत्माएं होती हैं सत्युग और त्रेता युग में, जो मनुष्य जीवन व्यतीत सुख शांति से संपन्न कर रहे होते हैं, उनमें मनोविकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती बॉडी कॉन्शियस स्टेज से। इसके कारण से आप देखो शास्त्रों में हमारे आता है कि देवी देवता भी वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारी मार्ग में गए। तो द्वापर युग से काम क्रोध लोमो अहंकार आत्मा में आने शुरू होते हैं।
तो अब मैं आपसे ये प्रश्न करूंगी कि जो शिव की बारात में अपने लूले लंगड़े यानी बाराती जो बनते हैं उनका तो आपने बता दिया कि क्यों ऐसे बनते हैं, लेकिन जो सजनिया जिन्हें बनना है उसके लिए वे क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करने से आप शिव साजन की सजनी बन पाते हैं?
सबसे पहले तो हम स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूँ, फिर स्वयं को पहचानने के बाद मैं आत्मा हूँ ये हमने समझ लिया, लेकिन मैं आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा बन रही हूँ या नहीं बन रही हूँ। परमात्मा शिव के दिए हुए ज्ञान को अपने आचरण में, व्यवहार में प्रतिदिन ला रही हूँ या नहीं ला रही हूँ, इसकी चेकिंग भी करते जाएं और स्वयं को चेंज भी करते जाएं। प्रतिदिन परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षाओं का जब हम अपने जीवन में अध्ययन करते रहेंगे और जो परमात्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं हैं स्वयं के परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इसलिए पहले स्वयं का परिवर्तन जब हम करते हैं प्रतिदिन अपनी चेकिंग और चेंज के द्वारा, तो हम संपूर्ण संपन्न कंप्लीट परफेक्शन की स्टेज को गेन कर जाएंगे और सजनी की लिस्ट में आ जाएंगे।
पूनम बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें बताया कि शिव साजन के अगर सजनी बनना है तो पहली बात उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़े और कौन पास हो जाते हैं कौन फेल हो जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर जो शिव भक्त हैं और अन्य सभी आत्माएं वह ये बात जानकर अति अति गदगद हो रही होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। तो प्रिय दर्शकों आज आपने देखा कि शिव की बारात का सही परिचय, सही सत्य क्या है, और अगर हम इसमें देखिए पार्टिसिपेट तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं क्योंकि शिव पिता हमारे हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो हम ऑलरेडी उस बारात के तो हिस्सेदार हैं ही। अब रेस ये है कि हम बाराती के रूप में जाते हैं कि हम सजनी बन के जाते हैं, ये हमें देखना है। तो सभी शिव भक्तों से और सभी आत्माओं से हम तो यही कहेंगे कि जो राजयोग की प्रक्रिया है वह अपने जीवन में अवश्य उसका उपयोग करें और अपने इस योग के द्वारा अपने ऊपर राज्य करके, क्योंकि जो जैसे कि बताया भी गया कि सेल्फ सॉवरेनिटी जो स्वयं के ऊपर राज्य कर सकता है वो ही विश्व के राज्य का अधिकारी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के चैट शो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।